वंदन क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। भगवान को नमस्कार क्यों किया जा रहा है? बोलते हैं हम लोग पहले नमोकार मंत्र फिर मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीहणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवताहुणम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बात कहां से प्रारंभ हुई थी कि वो एक मुनिराज किसी श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए गए थे और आहार चर्या से लौटते समय उन्होंने दीवार पर एक सूत्र लिखे हुए देखा। सूत्र था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। पता है आपको 2000 साल पहले की घटना है चंद्रकांत में। वहाँ किसी गांव में एक श्रावक गृहस्थ अपने घर की दीवार पर रोजाना सूक्तियां लिखता था, सुभाषित वाक्य लिखता था, अच्छे अच्छे रोज बदलता था, कच्ची दीवार थी। तो क्या हुआ, एक मुनिराज उसके यहाँ आहार के लिए आए और उन्होंने दीवार पर देखा तो वहां लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अपना पहला सूत्र है ना, इसका पहला ही सूत्र है। तो मुनिराज ने उसके पहले सम्यक शब्द लिख दिया। तो क्या हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मुनिराज तो आद करके चले। जब गृहस्थ को पता लगा कि अरे इसके पहले सम्यक शब्द जोड़ दिया है, कोई बहुत विशिष्ट ज्ञानी थे, ऐसा विचार कर वो मुनिराज को खोजता हुआ चला गया। और जंगल में जहां मुनिराज पहुंचे वहां उनसे चर्चा करने लगा। जब चर्चा प्रारंभ हुई तो इस सत्वार सूत्र की रचना हुई पूरे ग्रंथ की, क्योंकि वो जो पहला सूत्र था ना उस सूत्र से चर्चा शुरू हो गई। पहला सूत्र हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया सम्यक दर्शन क्या होता है। भाई सूत्र में था ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम मोक्ष मार्ग। तो शिष्य ने पूछा सम्यक दर्शन क्या होता है, तो दूसरा सूत्र बन गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व अर्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर शिष्य ने प्रश्न किया तो ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, प्रकट कैसे होता है। तो तीसरा सूत्र आ गया सामने जिसमें लिखा तन्न सर्गाद्धिगमात्वा, तत् निसर्गात् अधिगमात्वा, माने वो सम्यक दर्शन निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी होता है। ये दो प्रकार से ये सम्यक दर्शन होता है। निसर्ग माने होता है स्वभाव, अधिगम माने होता है ज्ञान। किसी के ज्ञान कराने से, किसी के उपदेश देने से वो अधिगम है, और अपने ही स्वभाव से हो वो कौन सा है, निसर्ग। ठीक है, और जो दूसरे के उपदेश से हो वो कौन सा है? अधिगम। ध्यान से सुनो भाई, मैं समझा रहा हूँ कोई चीज, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। ये कोई मंद बुद्धियों की बात नहीं, मन सबको समझ में आए। और फिर से तीन चार दिन से समझा रहा हूँ, क्यों नहीं समझ में आएगी? दो प्रकार से उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन, एक निसर्ग एक अधिगम, तीन सूत्र हुए। फिर शिष्य ने फिर प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? कि साहब अभी आपने एक मिनट पहले ये कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्व क्या होते हैं? तो फिर नया सूत्र लिख दिया है, पर उसके जवाब में क्या बात आई? जीवा जीवास्त्रव बंध संवद निर्जरा मोक्षा तत्वम, जीव अजीव आश्रव बंध संवद निर्जरा और मोक्ष ये तत्व हैं। तो सात तत्वों की बात कह दी हूं। फिर कहा कि इनको कोई कैसे क्या समझे इनके बारे में, तो समझ में नहीं आ रहे। तो फिर उन्होंने कहा इनको जानने के उपाय बतला दिए। क्या उपाय है इनको जानने के? तो कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्संज्ञा है। आप इनको नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो, भाव से जानो, इन चार अपेक्षाओं से इन सात तत्वों को जानो। इनकी भी चर्चा कर ली थी अपन ने। नाम इसका मतलब बिना किसी गुण धर्म की अपेक्षा लिए हुए व्यक्ति या वस्तु को पहचानने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो है नाम। नाम क्या चीज है? जिससे व्यक्ति या वस्तु को पहचाना जाए, बस वो नाम है। एक है स्थापना। स्थापना होती है किसी की किसी और में, वो है स्थापना। दो प्रकार की कही थी हमने, कौन कौन सी थी आज? सदाकार और असदाकार स्थापना। मैं पूछूंगा बेटा रोजाना यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्लास चल रही है। एक सदाकार स्थापना, एक असदाकार स्थापना। जो सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए उसको पूछने का पूरा अधिकार है, और क्लास में नहीं समझ में आए तो आप पूछिए, और जो समझा रहा हूँ वो किसी से भी पूछ सकता हूँ। ठीक है ना सर? गणेश भाई बराबर है? डॉक्टर साहब स्थापना कितने प्रकार की?
दो।
कौन कौन सी? एक सद आकार और एक असद आकार। जैसा आकार हो उसकी स्थापना उसी तरह के आकार वाली चीज में करें, वो सदाकार स्थापना है। बिना आकार वाली में यदि उसकी स्थापना कर दी तो हम कहेंगे ये असदाकार स्थापना है। स्थापना मैंने एक एग्जांपल दिया था इसके लिए, किसी को याद है क्या? चेस में कोई कितनी कितनी काटियां होती है चेस में? कितनी कितनी काटियां होती है? नहीं, एक 16 और 16 32। हाँ तो खेलते
खेलते
खेलते हैं। तो 8 फिर 8 16 अपने इधर और 16 उधर। 32 में से कोई एक चीज चला गया, मान लीजिए घोड़ा यदि गायब हो गया तो उसकी जगह क्या करेंगे हम? अपन कुछ भी रख देंगे, कागज का टुकड़ा भी रख सकते हैं। वो कागज का टुकड़ा कैसे चलेगा? घोड़े की जैसे चलेगा, हाफ टू एंड हाफ चलेगा, ढाई ढाई कदम चलेगा। खैर चलिए, ये हुई स्थापना। फिर था द्रव्य। द्रव्य निक्षेप, ये निक्षेप है चार। द्रव्य निक्षेप से समझाया भूत और भविष्य पर्यायों को देखना, और भाव निक्षेप से कहा सिर्फ वर्तमान अवस्था से देखना। ठीक है, ये थे चार निक्षेप। किसलिए थे ये? बोले जीव अजीव आश्रव बंध संवर नजरा मोक्षास्तत्व, इनको कैसे जाने? तो कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्संन्यास है। पांचवा सूत्र हो गया। पूछे जानने के कोई उपाय है क्या, कैसे जानेंगे? तो फिर नया सूत्र लिख दिया, प्रमाण नये अधिगम है, प्रमाण से जानो और नये से जानो। क्या मतलब साहब प्रमाण और नये से जाने, इसका क्या मतलब हुआ? बोले या तो वस्तु को पूरा जानो, प्रमाण से जानने का मतलब होल नॉलेज, ये जनरल है, ये सामान्य है, सामान्य रूप से पूरी वस्तु को जान लेना ये प्रमाण से जानना, और अंश मात्र को जानना ये है नये। नये माने जस्ट एक सिंगल एंगल, सिर्फ एक अपेक्षा से जान रहे हैं। अपेक्षाएं बहुत हो सकती है भाई साहब, आप एक दृष्टि बदलते ही हमारा सारी दुनिया बदल जाती है। आप जानते हैं ये दुनिया कैसी है, दुनिया अच्छी है कि बुरी है? अपनी दृष्टि पे निर्भर करता है। आपने वो दुर्योधन और युधिष्ठिर वाली उस चर्चा को तो सुना होगा ना, दुर्योधन और युधिष्ठिर उन दोनों को श्री कृष्ण ने बुलाया, नहीं वो अलग कहानी थी। दुर्योधन और युधिष्ठिर इन दोनों को बुलाया और कहा कि अपना जो ये नगर है हस्तिनापुर, हम इसको थोड़ा सा एक बंटवारा करना चाहते हैं, इसमें अच्छे अच्छे लोग एक तरफ हो जाएं और बुरे बुरे लोग एक जगह पर रह जाएं, जिससे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। बदमाशों को एक एरिया में शिफ्ट कर दें और अच्छे लोगों को एक एरिया में शिफ्ट कर दें। तो बोले हम क्या कर सकते हैं? तो दुर्योधन से कहा कि भाई जाओ तुम एक कॉपी पेन है और एक लिस्ट बना करके लाओ, जिसमें जितने बुरे बुरे लोग हैं सबकी लिस्ट हो जाए नगर में। नहीं, अच्छे अच्छे लोगों की, दुर्योधन को अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा, और युधिष्ठिर को ये कहा कि जाओ दुनिया यहाँ अपने पूरे नगर में जो बुरे लोग दिखते हैं उनकी लिस्ट बना करके लाओ। दोनों को एक कॉपी दे दी, क्या कल तक लिस्ट बना करके लाओ, तो अपन कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि पूरे नगर की व्यवस्था बराबर हो जाए। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन लौट करके आए हैं? दुर्योधन जब लौट करके आए तो उससे पूछा कि लाओ भाई अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट, कितने लोगों के नाम लाए? ए, ये पूरे नगर में सब बदमाश लोग थे, मैं जिसको देखता था सब मेरे को बदमाश लगता थे। कोई बहुत गुस्से वाला था, कोई बहुत घमंडी था, कोई बहुत मायाचारी था, कोई चोर था, कोई बेईमान था, कोई लोभी था, सारे लोग बदमाश है, कोई अच्छा नहीं है। ये लोग कॉफी खाली की खाली सामने। इतनी देर में युधिष्ठिर आ गए, उनसे कहा लाओ भाई तुम्हारी कॉफी तो पूरी भर गई होगी, क्योंकि तो सब बुरे बुरे लोग हैं, तो तुम्हें तो बुरे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। तो वो कॉफी लेकर के आएगी, नहीं मैं तो जिसको देखता था मुझे अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते थे, हर व्यक्ति में दया थी, हर व्यक्ति में करुणा थी, हर व्यक्ति सदाचारी था, कॉफी खाली की खाली। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई दुनिया में कोई अच्छे और बुरे नहीं होते, अच्छा और बुरा तो हमारा दृष्टिकोण होता है। आप जब अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको सब अच्छे नजर आते हैं, आप जब बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको सब बुरे नजर आते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है किसके बारे में कहें हम? वो कहते हैं अच्छा और बुरा कौन कि कोई नहीं। इसका मतलब ये जो दृष्टिकोण है, ये जो नजरिया है आपको देखने का, इस नजरिए का नाम है नये। सूत्र दिया ना, प्रमाण नये अधिगम है, प्रमाण नये अधिगम है, प्रमाण और नये के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। जानने के उपाय हो गए, कभी प्रमाण से जानो कभी नये से जानो। दृष्टिकोण हो गया, दृष्टिकोण है, एंगल है, अपेक्षा है, किसी भी एक दृष्टि से हमने देखा। व्यक्तियों को बहुत दृष्टिकोण से देखते हैं हम। हमने तो आपको एक और एग्जांपल दिया था इसमें कि हमें एक लड़का चाहिए घर में। एक लड़का, आपको एक लड़का हो तो बताना आपकी निगाह में कौन सा लड़का बताएं? नौकर बतलाएं कि बेटी के लिए लड़का बताएं? कि आप किस अपेक्षा से जानना चाहते हैं तो अपेक्षा बता दो। अपेक्षा बताएंगे तो फिर हम उस आधार पर बात बतला पाएंगे। चलिए, तो प्रमाण और न्याय के माध्यम से जानने की बात कही, फिर प्रश्न खड़ा किया कि अच्छा प्रमाण और न्याय के माध्यम से इनको जाने तो फिर किस प्रकार से जाने? तो फिर उन्होंने आगे एक नया सूत्र दे दिया। उन्होंने कहा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदांत है। आप लोग रिपीट मत करना, क्योंकि रिपीट करोगे तो सीख जाओगे आप लोग। क्या कहा? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। निर्देश बोलिए। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। क्या कहा? इन बातों को जानो। निर्देश, सबसे पहला नंबर निर्देश का दे दिया। निर्देश माने क्या होता है? नाम जान लेना, उसका नाम है निर्देश। हमने सिर्फ नाम जाना, तो क्या हो गया? नाम जानने से निर्देश, इसी को निर्देश कहते हैं। फिर कहा स्वामित्व, मालिक कौन है? निर्देश के बाद में स्वामित्व, इसका स्वामी कौन है? ये स्वामित्व। फिर कहा साधन, जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं, वो बना कैसे है? उत्पत्ति। साधन, अधिकरण माने बेस क्या है उसका, आधार। स्थिति, कब तक टिकेगा? ड्यूरेबिलिटी। विधान माने होता है भेद प्रभेद, उनके भेदों से जानना ही कहलाता है विधान। ओहो, बहुत सारी बातें जाननी पड़ेगी। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान से बहुत सारी बातें जाननी पड़ेगी। तो कहा अरे बहुत नहीं, ये सब तो वही क्या है, अभी तो और जानना पड़ेगा। बोले वो क्या? सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वैश्य। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वैश्य। कठिन लग रहा है क्या? सूत्र नंबर 8 है। शिष्य प्रश्न कर रहा है, आचार्य देव जवाब दे रहे हैं। तत्वार सूत्र की रचना होती जा रही है, पूरे तत्वार सूत्र की रचना इसी प्रकार हुई है। सत माने अस्तित्व, सत माने छह, आत्मा छह, सत है तो कैसा है? उन्हें नित्य है। दूसरा वचन सत, फिर संख्या माने काउंटिंग, फिर क्षेत्र, क्षेत्र माने जिस जगह पर वो वस्तु है, आत्मा है, आत्मा है तो आत्मा के प्रकार बता दिए संख्या, फिर क्षेत्र बतला दिया। वो आत्मा मिलेगा कहाँ? किसाब यदि आपको आत्मा चाहिए तो आपको यहाँ फ्लोरिडा के जैन सेंटर में जाना पड़ेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा रे भाई? आत्मा तो जैन सेंटर में मिलेगा। अरे जैन सेंटर में नहीं मिलेगा क्या? लेकिन जैन सेंटर में भी है, एट प्रेजेंट में अपना आत्मा जैन सेंटर में है कि क्षेत्र। फिर बात कही स्पर्शन, क्षेत्र के बाद में स्पर्शन। स्पर्शन माने पहले कहाँ था और आगे कहाँ होने की संभावना है। ये भूत भावी प्लेस को स्पर्शन कहते हैं। फिर काल, काल माने टाइम पीरियड, समय कब मिलेगा आत्मा। फिर अंतर, अंतर माने गैप, मतलब जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन को कई रीति से जानने की बात करते हैं मुकुंद भाई। जैसे सम्य दृष्टि जीव, उनमें कितना गैप हो सकता है। एक बार औक्षणिक सम्यक्त हुआ और छूट गया, अब दोबारा औक्षणिक सम्यक्त हो तो उसमें कितना अंतर पड़ सकता है, मिनिमम कितना अंतर होगा, मैक्सिमम कितना अंतर होगा, मिनिमम अंतर कितना होगा, पता है आपको? औक्षणिक सम्यक्त होकर के छूट जाए तो मिनिमम अंतर का है असंख्यात वर्षों का। एक बार औक्षणिक सम्यक्त हुआ और यदि छूट गया तो कम से कम असंख्यात वर्षों में होगा दोबारा, उससे पहले नहीं हो सकता है, इतना अंतर। हाँ हाँ, लेकिन बीच में क्षयोक्षम सम्यक दर्शन हो सकता है, जल्दी उपशम होकर के छूट गया था, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन हो गया दोबारा। क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के बीच में अंतर कितना होता है? अंतर्मूर्त का, क्योंकि क्षयोक्षम सम्यक दर्शन यदि छूट गया तो अंतर्मूर्त में वो दोबारा सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, इस क्षयोक्षम सम्यक दर्शन के लिए शास्त्रों में लोहार की संडासी का एग्जाम्पल दिया है। लोहार की संडासी जानते हैं? संडासी होती है पकड़ने की, पकड़ने की होती है आयरन की। वो क्या करता है, उससे लोहा होता है बहुत गर्म गर्म आग में पड़ा होता है। अब आग में उस संडासी को, जो भी आप कहते हैं गुजराती में, उसको पकड़ा अग्नि में, तो गर्म हो गई वो बहुत ज्यादा, उससे उसने उठा करके अपना काम किया, बहुत गर्म हो गई थी। अब उसको गर्म गर्म को रखता नहीं है पास में, क्योंकि हाथ लग जाएगा तो जल जाएगा, पानी में, तुरंत पानी में डाल देता है। अब पानी में डाला, अब थोड़ी देर बाद में फिर काम पड़ा तो क्या किया, पानी में से उठाया और फिर अग्नि में डाल दिया, फिर अग्नि में डाला, फिर क्या किया, काम होने के बाद में फिर उसको पानी में डाल दिया। तो जैसे लोहार की संडासी क्षण में पानी में चले जाती है और क्षण में अग्नि में चले जाती है, उसी प्रकार क्षयोक्षम सम्यक्त्व कभी छूट जाता है तो ये जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि होकर फिर कभी सम्यक दृष्टि हो जाता है, फिर कभी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, फिर कभी सम्यक दृष्टि हो जाता है। बड़ी स्थिति ऐसी है क्षयोक्षम सम्यक्त्व के संदर्भ में। तो आपको कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए, औक्षणिक के क्षयोक्षणिक? दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए, अगर शायद चाहिए। अब मैंने तो एक शायद जो होता है वो तो केवली या श्रुति केवली के पादमूल में होता है। अब केवली श्रुति केवलियों का पादमूल या उनके चरण का सानिध्य वो वर्तमान में तो मिलेगा नहीं कहीं भी, तो फिर क्या करें, तो रहने दो, फिर अब नहीं मिल रहा है तो रहने दे। अरे जो मिले तो ले लो, क्या काम चलेगा। पता है सम्यक दर्शन हो जाने पर एक बात नक्की हो जाती है, क्या, कि ये जीव भव्य हो जाता है, भव्य पने की प्रकटता हो जाती है, रियलाइजेशन हो जाता है। अभी हमारे को पता नहीं है कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है, लेकिन जिस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, इसका मतलब वो जीव नियम से भव्य है। फिर क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? देखो, औक्षणिक सम्यक दर्शन ही क्षयोक्षम में बदलता है, और क्षयोक्षम सम्यक दर्शन ही क्षायिक सम्यक दर्शन में बदलता है। डायरेक्ट क्षायिक सम्यक दर्शन किसी जीव को होता भी नहीं है। जब भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो पहले औक्षणिक सम्यक दर्शन ही होगा, फिर उसके बाद में क्षयोक्षम सम्यक दर्शन होगा, वो औक्षणिक वाला ही क्षयोक्षम में बदलेगा, और वो क्षयोक्षम सम्यक दर्शन ही क्षायिक सम्यक दर्शन में बदलेगा। ऐसा नियम, ये सब करणानुयोग के नियम है, धर्म का चाहे कोई भी हो। अंतर हुआ, फिर अंतर के बाद में भाव, पांच प्रकार के भाव हैं, उन पांच भावों की चर्चा हम उम्मीद करते हैं कि कल शुरू करें इसी तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में भाव औपचमिक औदयिक पारिणामिक, ये पांच भाव क्या है, इन पांच भावों का स्वरूप क्या है, इन पांच भावों के भेद प्रभेद क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, अपने को पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो पांच भाव, फिर अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व मतलब कम ज्यादा कंपेरिजन, कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है, नारकियों की संख्या कम है, देवों की संख्या ज्यादा है, देवों की संख्या ज्यादा है, कम है, त्रिनेत्रों की संख्या ज्यादा है, तो ये सब कंपेरिजन में एक इंद्रिय बहुत है, दो इंद्रिय बहुत कम है, दो इंद्रिय ज्यादा है, तीन इंद्रिय कम है। इस कंपेरिजन से हमारे को अपनी संख्या यदि कम है तो कीमत दिखाती है। जो जितने कम होते हैं उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। किस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब किस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी, जो रेयर है, जो मिलती नहीं है, जिसको मिलना बहुत कठिन है, उस चीज की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ अल्प बहुत कह करके ये कंपैरिजन किया, इतनी बातें कही। अब वो शिष्य जो सामने बैठा था वो बिल्कुल आप लोगों जैसे पूछने लग गया, आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या पता नहीं क्या क्या बातें बता दिए, ये सब दो सूत्र तो बहुत कठिन हो गए, ये सातवां और आठवां, सेवंथ नंबर जिसने कहा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत है, फिर तत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत श्रेष्ठ है। अरे तो सब ये अपने बस की बात नहीं है, ये जानेंगे कैसे इनको, इन सब चीजों को। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा यार तू डरता क्यों है, ज्ञान है पांच प्रकार के, ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान में सामर्थ्य है जिससे सबको जाना जा सके, ज्ञान बड़ी चमत्कारिक विशेषता है। बोले क्यों, कौन से ज्ञान, तो नया सूत्र लिखा मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, मति श्रुत अवधि, बोलिए मति श्रुत अवधि, आधा आधा बोलिए मति श्रुत अवधि, मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम, याद है मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम, ये पांच प्रकार के ज्ञान हो गए। एक ज्ञान का नाम है मति ज्ञान, एक का नाम है श्रुत ज्ञान, एक है अवधि ज्ञान। मति श्रुतावधि, मति श्रुत अवधि, फिर मन पर्याय और केवलानि ज्ञानम, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान पांच प्रकार के होते हैं, समझ में आ रही। ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, जिससे जाना जाए, जानने में जो सहयोगी हो उसका नाम है ज्ञान। सबके पास में ज्ञान है, हमारे पास में कितने ज्ञान है आपके पास में, है कि नहीं है। जब एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी महेंद्र भाई, मैंने कहा कितने ज्ञान है आपके पास में, बोले भाव हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है। क्या बोला, हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास क्या ज्ञान होगा, हम तो अज्ञानी है। कि सुन भाई, जिसमें ज्ञान नहीं होता वो ऐसा होता है, ऐसे पदार्थ जैसे होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स जैसे, अचेतन होते हैं जिसमें ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान तो कंपलसरी है, आपके पास में भी ज्ञान है तो फिर कहता है साहब हमारे तो आखिरी ज्ञान होगा, हम तो हमारे तो आखिरी में डाल दो, लास्ट में डाल दो हमारे को। तो कहते हैं नहीं नहीं, आखिरी ज्ञान माने जो केवल ज्ञान है वो तो भगवान के होता है, लास्ट वाला तो भगवान के होता है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं अभी है ना, तो भी सबका कुरान, लेकिन कुछ बात रिलेटिव नहीं थी इससे, कोई बात नहीं। हम क्या करें, पांच प्रकार के ज्ञानों में से आपके कौन सा ज्ञान है, बोले तो हमारे तो सिर्फ पांच में से कोई एक आध दे दो, कोई हमारे को नहीं, एक होता है तो केवल ज्ञान ही होता है, अच्छा एक नहीं है चंद्रकांत भाई, आपके पास दो ज्ञान है, उन्हें क्या बात कर रहे हो? वैसे एक की खबर नहीं थी, कितने ज्ञान है बेटा अपने पास में? दो ज्ञान है। कौन कौन से? अपने पास में दो ज्ञान है। लेकिन पहले एक समस्या यहाँ शिष्य के सामने थी, यार आप पांच प्रकार के ज्ञान कह रहे हो, पहले ये बात बताओ इन पांच ज्ञानों में से सच्चे कौन से हैं? सच्चे और झूठे ज्ञान तो झूठा भी हो सकता है, सच्चे कौन से हैं? तो फिर नया सूत्र दे दिया, सत प्रमाण है, पांचवी प्रमाण है। अच्छा हमने जिन ज्ञानों की बात कही है, ये पांचों के पांचों ज्ञान डॉक्टर साहब क्या है? प्रमाण माने सच्चे। ये पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, ये पांचों ज्ञान सच्चे ज्ञान है, प्रामाणिक है, इनमें कोई झूठा नहीं है। ज्ञान तो प्रमाणिक होता है, ज्ञान ज्ञान झूठा नहीं होता कभी भी। क्या ज्ञान में झूठापन नहीं होता? सुबह करेंगे गैर भाव की चर्चा करते समय, ज्ञान झूठा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ज्ञान के साथ में जो मोह लगा है वो उसे झूठा बना देता है। ज्ञान ज्ञान तो जैसा है वैसा जानता है, ज्ञान की पर्याय तो जानने का काम करती है। अब उसको जान करके जब राग किया, उसको जान करके द्वेष किया, तो ये चारित्र की विकृति है, ज्ञान की विकृति नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। मिरर झूठ बोलता है क्या? मिरर कभी गलत दिखा सकता है क्या? ग्लास लगा हुआ है बहुत बड़ा, ये साहब ये झूठ बोल रहा है, ये तो गलत दिखा रहा है, मैं तो बहुत गोरा हूँ, इतना काला दिखा रहा है। गोरे होंगे तो काला दिखाएगा और काले होंगे तो गोरा दिखाएगा कि नहीं, आई मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसी तरह से ज्ञान कभी गलत नहीं झलकाता है, ज्ञान तो जैसा है वैसा झलकाने का काम करता है, यथार्थ झलकाने का काम करता है। उसका नाम क्या है? ज्ञान। पांच हो गए सत प्रमाणे। अच्छा पांचों ज्ञान प्रमाण है। यहाँ पांचों प्रमाण है कि इनमें से कुछ कैसे होंगे? कुछ बोले इनमें क्या है? आद्य परोक्षम, ये जो पांच कहे थे ना, सच्चे तो पांचों हैं, सच्चे ज्ञान तो पांचों हैं मनोज भाई, लेकिन आद्य परोक्षम, आद्य शुरू वाले, आदि आदि मतलब स्टार्टिंग, आदि अनादि, आदि आदि जरूर समझते हैं। आपने पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? आदिश्वरनाथ। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव। तो आदिनाथ क्यों कहते हैं? पहले होने की वजह से। अपने तीर्थंकर जो हुए फर्स्ट नंबर के, उनका नाम ऋषभ देव है, तो उनको आदिनाथ क्यों कहते हैं? आदिश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टार्टिंग में हुए, पहले तीर्थंकर होने की वजह से उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। आदि माने शुरुआत, आद्य माने शुरू के, परोक्षम माने परोक्ष है, शुरू के दो परोक्ष हैं। ये परोक्ष क्या होता है? परोक्ष क्या होता है समझ में नहीं आया हमारे को, तो सुनो पहले थोड़ा आगे सुनो। आद्य परोक्षम, शुरू के दो परोक्ष हैं कि बाकी के बचे हुए प्रत्यक्षम अन्यत्र क्या है? प्रत्यक्षम अन्यत्र। आप देखो तो सही, आप देखो मेरी तरफ देखोगे तो कैसे पढ़ोगे? मेरे चेहरे पे थोड़े ना लिखा है सूत्र, सूत्र जहाँ लिखा है वहाँ देखो भाई। प्रत्यक्षम अन्यत्र, प्रत्यक्ष मन्यत, ठीक है, मतलब अन्य जितने हैं वो है प्रत्यक्ष। शुरू के दो परोक्ष थे और बाद के कितने बचेंगे डॉक्टर साहब? तीन। टोटल कितने हैं? टोटल पांच है ना, उन पांच में से शुरू के दो परोक्ष और बाद के तीन प्रत्यक्ष। ये परोक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है? परोक्ष प्रत्यक्ष क्या होता है बताओ?
इंद्रिय, किसी की सहायता है,
हाँ,
और प्रत्येक से उसके किसी की साइनी की।
हाँ, माने डायरेक्ट जो ज्ञान है वो है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट जो है उसे कहते हैं परोक्ष, जिसमें किसी के सहायता की जरूरत पड़े उसका नाम है परोक्ष, जिसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़े उसका नाम है प्रत्यक्ष। तो कौन कौन से ज्ञान परोक्ष हैं और कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं? बोलो आर्य, कौन से प्रत्यक्ष और कौन से परोक्ष हैं? ये क्या है? मति और श्रुत, ये दोनों परोक्ष हैं, और बाकी के तीन प्रत्यक्ष हैं। माने हम हमारे कौन कौन से ज्ञान है? मति और श्रुत। इसका मतलब हमारे जितने भी ज्ञान होगा वो सब परोक्ष होगा, हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते किसी भी चीज को। हम जब भी जानते हैं हमारे जानने के लिए चक्षु चाहिए, आंखें मन वो नहीं जान पाते कि सामने वाले पदार्थ को। कानों में यदि उंगली डाल लो हमें सुनाई नहीं देता है, हम सुनते कैसे हैं? सुनते कैसे हैं? हम कान से सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनने का काम कान का नहीं ज्ञान का है, सुनने का काम ज्ञान का है कान का नहीं है, देखने का काम भी चक्षु का नहीं है, देखने का काम भी ज्ञान का है। हम आंखों से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो साहब, हम तो आंखों से देखते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो कि नहीं आप ज्ञान से देखते हैं? आप बता देते हैं कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है बिना आंखों से देखे हुए भी, वो कैसे बता देते हैं? जब घर में कभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, पावर नहीं आ रहा हो, लाइट चली जाए, रात्रि का समय हो, तो आपको चाहिए क्या? बताओ क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, टॉर्च चाहिए, लालटेन चाहिए, कैंडल चाहिए, चाहिए आपको? अब रात को अंधेरा है, अंधकार में कुछ नहीं दिख रहा है, फिर क्या करते हैं आप? कैसे लाते हैं अंधेरे में? लाएंगे कैसे डॉक्टर साहब? आपने तो कैसे लाइट लाते हैं? तो आप उस चीज को लेने के लिए यदि वो समझिए कहीं कपाट में रखी है तो आप किचन में जाते हैं कि नहीं? अलमेरा में यदि रखी हुई है तो आप किचन में जाएंगे लेने के लिए? रखी है अलमारी में, तो आपको दिख रही है क्या कहाँ है? अच्छा, बच्चा लेने के लिए गया, उसको कहा बेटा जा अलमारी में से वो टॉर्च ले आओ, वहाँ रखी है। अब वो बच्चा गया वहाँ, बोले नहीं दिख रही है मेरे को, यहाँ नहीं है। अरे देख वही रखी है। आप क्या कहते? देख वही रखी है कि नहीं मिल रही है? अरे मुझे दिख रही है यहाँ से, वहाँ रखी हुई है। कैसे दिख रही है? ज्ञान से दिख रही है। इसका मतलब ज्ञान देखने का काम करता है। हम जो भी चीज देखते हैं वो ज्ञान से देखते हैं। अरे कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइट जाने की बात मत करो, रोशनी है, पर्याप्त प्रकाश है, उसके बावजूद सामने रखी हुई चीज नहीं दिखती है। आप पूछते रहते हैं और दिखती नहीं है। बोलो, आप ढूंढते रहते हैं और दिखती नहीं है, ये क्या हो गया? फिर सामने है फिर भी नहीं दिख रही है। और कभी ऐसा भी होता है कोई चीज सामने नहीं है फिर भी दिख जाती है। ये सब ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान में बहुत सामर्थ्य है, ज्ञान में बहुत शक्ति है, ज्ञान में बहुत पावर है। ज्ञान में कितनी पावर है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। किन किन बातों को जान लेता है? ऐसी ऐसी बातों को भी जान सकता है जो बातें संभव ही नहीं हो, उनको भी जान ले ले। व्यंग चित्रकारों के कमाल देखे हैं आपने? वो चित्रकार आर्टिस्ट कुछ भी बना देते हैं, कुछ का कुछ बनाते हैं। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो पूरा शरीर बनाए मनुष्य का या पूरा शरीर बनाए गधे का,
और ऊपर जो चेहरा लगा दे गए ट्रंप का, कर सकते हैं ऐसा भी? ऐसा कर लेते हैं लोग?
होता है
ऐसा कॉमेडी? तू कैसे बनाया वो बोलो? ज्ञान से बनाया है। एक ज्ञान में अनेक तरह की आकृतियां बनती है। मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूं, आप लोगों ने कभी भूत देखा है क्या? भूत
नहीं,
भूत नहीं देखा आपने कभी? भूत नहीं देखा? आप आंख बंद करके एक बार भूत को देखो, आपको दिखेगा क्या? आज भूत दिख सकता है? कैसे कैसा दिखता है? अच्छा कैसा दिखता है? कल्पना से दिखता है? तो कल्पना से कहाँ दिखेगा? कल्पना से कहाँ दिखेगा? अपने ज्ञान में। मुझे पिक्चर बनी है, वो पिक्चर कहीं बाहर नहीं बनी है, वो पिक्चर अपने ज्ञान में दिखती है। न्याय शास्त्रों में ज्ञान की इस सामर्थ्य को बतलाते हुए एक श्लोक लिखा, इहिते कारागारे, सुना? इहिते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई के निमिलित नयने तथापि कांतानम जत्तम। क्या क्या कह दिया है वहां? वहां कह दिया है किसी एक व्यक्ति को किसी, बहुत न्याय शास्त्र का उदाहरण है, मेरे घर की बात नहीं है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं कहूं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा है आचार्य देव ने, वो कहते हैं कि एक राजा ने एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया इस अपराध के फल में कि वो राजा की पुत्री से प्रेम करने लगा था। जेल में डाल दिया उसको, बंद कर दिया उसको, ऐसी काल कोठरी में डाल दिया। तब यहां सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, सूची माने तो सुई निडल, उसके आगे के हिस्से बराबर भी कहीं अंदर प्रकाश नहीं आ रहा हो अंदर, और इतना ही नहीं फिर उसकी आंखें बंद कर दी, और आंखें बंद करके काली पट्टी बांध दी। क्या? आंखें बंद, पट्टी बंद, दरवाजे बंद, चारों तरफ से पैक। बोल अब देखेगा, अब देखेगा आंख उठा करके। तो कहता है मुझे अभी भी उसका चेहरा क्लियर दिख रहा है। क्या? अभी अभी ये तेरे को क्लियर कैसे दिख रहा है? ज्ञान में देख रहा है, ज्ञान की सामर्थ्य, आप ज्ञान में देख सकते हो। ज्ञान में क्या क्या बातें आ सकती है आप कल्पना नहीं कर सकते हो, सारी बातें बहुत क्लियर। सपने आते हैं आपको, ज्ञान में आते हैं। ज्ञान का काम जानने मात्र का है, ज्ञान। अब ये हमारा जो ज्ञान है, जो कि चक्षु इंद्रिय से हुआ, कर्ण इंद्रिय से हुआ, मन के माध्यम से हुआ, माने डायरेक्ट नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान डायरेक्ट नहीं हुआ, ये शरीर और इंद्रियों के माध्यम से हुआ, इसे कहते हैं परोक्ष। ये ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे ही एकदम बिल्कुल वो चीज दिखने लगे जो चीज सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है। डायरेक्ट ज्ञान से दिखे, अंदर के ज्ञान से दिखे, आंखों से नहीं। आंखों से नहीं दिखने वाले पदार्थ भी जिस ज्ञान से दिख जाते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अभी ये सब ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा समझाने वाले हैं पूरे चैप्टर में, देखिए थोड़ा सा समझाओ इनको। प्रत्यक्ष परोक्ष जो पांच प्रकार के ज्ञान है थोड़ा सा क्लियर करो, कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट्स है हमारे मन में, नहीं समझ में आ रही तुम्हारे को। सुनो पहले वाले को समझाता हूँ, मती मती को समझा रहा हूँ, सूत्र नंबर 13। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपन आगे, याद भी होते जा रहे हैं ना आप लोगों को। मती स्मृति है, धीरे धीरे बोलो, मैं बोलता हूँ उतना रिपीट करना। मती स्मृति है संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम नर्थांतरम इत्य
नित्य नरथांतरम, बहुत क्लियर चीज होनी चाहिए बोलने में, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। मति ही स्मृति ही संज्ञा, चिंता भी निबोध, इत्यनर्थांतरम। देखो इसका अर्थ बतलाता हूँ, इसका क्या अर्थ होगा, एक एक शब्द देखना ध्यान से। मति, पहला शब्द है मति, फिर है स्मृति। स्मृति माने क्या होता है? याद, याद जो है वो स्मृति है। फिर है संज्ञा, संज्ञा मतलब भी वही है। फिर है चिंता, चिंता मतलब भी वही है। फिर है अभिनिबोध, अभिनिबोध माने भी वही है। फिर जब आप बता तो रहे हो, वही वही कह रहे हो, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध। कि मैं नहीं कह रहा हूं, उमा स्वामी आचार्य लिख रहे हैं, इति माने ये सब, इति अन अर्थांतरम, इत्यन अर्थांतरम, इति इत्यन अर्थांतरम। मुकुंद भाई, इति माने ये सब, अन माने नहीं, अर्थांतर, अर्थांतर मतलब अर्थ अंतर, दूसरी वस्तु, अन अर्थांतर दूसरी वस्तु नहीं, ये सब एक ही है। माने जो पांच शब्द दिए हैं, ये पांचों पर्यायवाची हैं, एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब इति अनर्थांतरम, अन अर्थांतर। अर्थांतर मतलब समझेगा आप, अर्थ माने होता है वस्तु, अर्थ अर्थांतर, एक अर्थ से दूसरा अर्थ, ये हो गया अर्थांतर। हमने कहा अर्थ अंतर नहीं होना, अन अर्थ अंतर, अन माने नहीं, अर्थ अंतर, अर्थ अंतर नहीं होना, माने इनके अर्थ में अंतर नहीं है, सब एक ही है। ये पांच नहीं है, ये पांचों एक ही के भेद हैं, पर्यायवाची। हाँ बोलिए,
जाति स्मरण भी इसी का भाग है।
हाँ, आप नहीं जानते
कौन
जाति स्मरण, जाति स्मरण क्या है? स्मरण है, स्मरण जाति स्मरण, स्मरण मतलब क्या होता है? सेकंड नंबर पे क्या शब्द है?
स्मृति,
स्मृति मतलब स्मरण। ये कहाँ रहता है ये स्मृति में बात कहाँ रहती है? मति में रहेगी, ये मति ज्ञान का प्रकार है। जाति स्मरण क्या होता है चंद्रकांत भाई, सुना है आपने कभी? मालूम है, जाति स्मरण होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को कभी कभी कुछ विशेष कर्म के उदय वगैरह से एक ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी लाइफ का पास्ट लाइफ दिखने लग जाती है, उसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। स्मरण माने याद आ जाना, और अपनी जाति से मतलब अपनी पास्ट लाइफ दिखने लग गई, मैं पिछले लाइफ में क्या था, उसकी पास्ट लाइफ में क्या था, उसकी पास्ट लाइफ में क्या था, ये बिल्कुल पिक्चराइज हो जाता है, दिखता है कई लोगों को। कल मेरे को महेंद्र भाई बतला रहे थे यहाँ कि यहाँ एक डॉक्टर है, ब्रायन वाइज, हमें बहुत लोग जानते हैं आप लोग तो, बिकॉज ऑफ महेंद्र ब्रायन वाइज। चलो, तो वो जो डॉक्टर है उसके पास में पेशेंट अभी लाइव जिंदा है, वो डॉक्टर अच्छा आप डॉक्टर हैं, अरे आप ये पेशेंट है,
पड़ी
है, पुस्तक पड़ी है, तो आप तो मिल लो ना कभी एक आध बार उनसे, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इलाज कराने के लिए नहीं मिलना है, इलाज कराने के लिए एक्सपेंसिव है वो। उन्होंने उनके उन्होंने कई वो विश्वास नहीं करते थे, तो कौन से पुनर्जन्म में उनको बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं था पुनर्जन्म में, लेकिन उनके पास में एक पेशेंट जब आई और जब उन्होंने उनको जब बारीकी से देखा, क्योंकि उन्होंने बहुत आर्टिकल लिखे पहले कि पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसे 30-40 आर्टिकल लिखे उन्होंने, ये पुनर्जन्म की मान्यता ठीक नहीं है। लेकिन एक घटना ऐसी घटी उनके साथ में, उसके बाद में उन्होंने फिर वापस लिखा कि मैंने जो पहले 30-40 आर्टिकल जो लिखे थे वो सब गलत है और पुनर्जन्म होता है। उनके पास में एक ऐसे पेशेंट का सामना हुआ जिस पेशेंट ने अपने पिछले जन्मों के बारे में बताया और वो बातें प्रूव हुई। मेरे पास एक बुक है, यहाँ नहीं, इंडिया में, आप चाहेंगे तो भेज दूंगा आपको। उस बुक में वो पुनर्जन्म संबंधी मोर देन 100 केस फैक्ट प्रूफ, कहाँ कहाँ पर, विद डेट, विद डिटेल्स, विद न्यूज़पेपर की डिटेल्स। 26 अक्टूबर 1977 में भोपाल के छपे हुए उस एडिशन में एक ऐसी घटना प्रकाशित हुई। 27 अक्टूबर 1982 में वहाँ एक ऐसी घटना, वो गुजरात समाचार में ऐसी प्रकाशित हुई। इस तरह की एविडेंस देकर के वो सारी बातें उसमें उन्होंने लिखी है, और सारी जितनी घटनाएं बतलाई है उन सब घटनाओं में ये बात बतलाई है कि कोई एक बालक जिसका आज जन्म हुआ है, साल दो साल बाद में जब वो बच्चा बोलने लगता है तो वो अपना नाम कुछ और बताता है, अपना नाम कुछ बतलाता है, अपनी पत्नी और अपने परिवार के नाम को बतलाता है। दो साल का बालक, सिर्फ टू एंड हाफ ईयर का बालक वो बोलता हुआ वो अपना एड्रेस कुछ और बतलाता है। कुछ समय तक तो उसके माता पिता समझ नहीं पाते, डॉक्टर को दिखाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर जो वो एड्रेस बतलाता है उस एड्रेस पर जाकर के देखा जाता है किसी दूसरे दूर देश गांव में, जिसका नाम उसके गांव में उसके परिवार में कभी किसी ने नहीं सुना हो, और वहां जाकर के वो एक एक बात बतलाता है, वो पूरी बातें फैक्ट निकलती है, सच निकलती है। वो बताता है ऐसी मेरी डेथ हो गई थी, मैं कुएं के अंदर गिर गया था, ऐसा हो गया था, और मालूम चलता है कि हाँ 4 साल पहले 3 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, हमारे बाबूजी थे वो यहाँ ऐसे थे, उनका पांव फिसल गया था, वो मर गए थे। वो ऐसी बातें बतलाता है कि मैं सेठ हूँ, ये मेरे 3 बेटे हैं, बच्चों के बारे में बतलाता है, ऐसे सीक्रेट बतलाता है जो कोई नहीं जानता था वो बतलाता है। 3 साल से जो तिजोरी की चाबी बच्चे लोग तलाश रहे थे, वो 2 साल का बच्चा कहीं जन्मा हुआ वो आकर के बता देता है वहां रखी है। तो बिलीव करना पड़ेगा। तो ऐसे जो स्मरण हो जाता है पिछले जन्मों के बारे में, जो स्मरण हो जाता है, ये सब स्मरण कहलाता है जाति स्मरण। ये जाति स्मरण कोई बहुत दिव्य ज्ञान नहीं है, कोई बहुत स्पेशल नहीं है, कोई आत्मज्ञानियों को होता हो ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, भेद विज्ञानी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल किसी भी इंसान को कभी भी हो सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे जाति स्मरण के बारे में? आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को हो जाए तो कितना अच्छा रहे, क्या करोगे जान के, क्या करोगे जान के, पिछले जन्म में मालूम कहाँ थे, क्या थे, कोई गाय होगा, कोई भैंस होगा, कोई कुत्ता बिल्ली होगा, होंगे मनुष्य भी होंगे, तो क्या दम है उन बातों में, और जान करके क्या हासिल हो जाएगा, ऐसी बातें हैं। ये स्मृति, ये जाति स्मरण ज्ञान जी का प्रकार है। चलो, ये जो कही ये बातें, 5 बातें मति ज्ञान के प्रकार, ये मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? अभी तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये उत्पन्न कैसे होता है? तो कहते तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, क्या कहा, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कठिन नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं क्या? वो छोटा सा बच्चा सुना सकता है? एक एक अक्षर देखो, एक एक अक्षर देखो, बिल्कुल कठिन नहीं है। आपकी निगाह वहाँ टिकी रहनी चाहिए उस सूत्र के ऊपर, तो क्लियर पढ़ पाएंगे। आर्य, एक एक अक्षर देखना, तदिंद्रियानिन्द्रिय निमित्तम, सही है, तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् तत्मनिदः इन्द्रिय अनिन्द्रिय निमित्तम् तत्मनिदः इन्द्रिय अनिन्द्रिय निमित्तम् माने वो इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय माने ये सेंस फाइव सेंस ये सब इंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन, अतिंद्रिय नहीं कह रहा हूं, अतिंद्रिय नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अनिंद्रिय। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अनिंद्रिय एंड अतिंद्रिय? नो नो, अतिंद्रिय मतलब आत्मा,
इसमें कोई इंद्रिय नहीं है,
जैसे कोई इंद्रिय नहीं है वो अतिंद्रिय है, आत्मा अतिंद्रिय है, मन अनिंद्रिय है, मन अनिंद्रिय है, पूछू मन मन अनिंद्रिय है और आत्मा अतिंद्रिय। आपका यदि कंसंट्रेशन होगा तो सारी बातें समझ में आएगी, सब आई कॉन्टेक्ट रहता है ना सबका, तो मेरे को पता लगता है आंखों से कौन समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है, मुझे ये समझ में आ जाता है किसके समझ में आ रही है और किसके नहीं आ रही है। हाँ, मन पर ये नहीं है कौन मती मती श्रुति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है। देखो तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, अरे इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से जो होता है वो क्या है, वो है मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान है। इस मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं हम, ओह बहुत भेद है, पहले बताए थे मैंने कितने भेद है मति ज्ञान के, इतना तो बता दो, मति ज्ञान के कितने वेद हैं, 336 मति ज्ञान के 336 वेद हैं, कैसे क्या भी किसी को, और 336 336 इतने याद करना बहुत कठिन काम है साहब, इतने यूज कर अभी हो जाएंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में हो सकते हैं, सूत्र याद होंगे उसको तो हो जाएंगे, सूत्र जैसे याद है वो तो सुना सकता है 336, सूत्र जैसे याद नहीं है वो नहीं सुना पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 336 को, सूत्र नंबर 15 नंबर सूत्र में नहीं है 336, 15, 16, 17, 18, 19 इन सब में मिला करके है 15 नंबर सूत्र, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा। देखो क्या हुआ, अवग्रह सबसे पहला शब्द क्या है, अवग्रह, अवग्रह सेकंड वर्ड है, उसके ऊपर था मात्रा, एक ही मात्र उसको कहते ई और है हा, ई हा, सेकंड वर्ड क्या हुआ, ई हा, पहला है अवग्रह, फिर क्या हुआ, ई हा, फिर है आवाय, आवाय, अवाय, अवग्रह, ई हा, और आ निकला इसमें से अवाय, ई हा पढ़ लिया आपने, ई हा, फिर हा के बाद में क्या निकला, सूत्र देखे में पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है, ई हा, फिर हा में से निकला अ, अवाय, और फिर आगे वर्ड है धारणा, चार बातें हो गई, अवग्रह, ई हा, अवाय और धारणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इस बार को बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि जो बातें सुन रहे हैं ये बातें धारणा तक चली जाएंगी, क्या क्या मतलब, यदि धारणा तक नहीं गई ना तो अगले साल मुझे फिर स्टार्टिंग से चलाना पड़ेगा। क्या ये धारणा क्या होता है? कोई बात जो धारणा में होती है वो बात, उस बात को रिकॉल किया जा सकता है स्मृति में। आपने किसी को उधार दिए थे डॉलर को? दिए दिए हैं, वापस नहीं किए?
थोड़ा दिया तो थोड़ा बाकी है,
थोड़ा बाकी है अभी। तो आपको याद है?
पक्का याद है।
पक्का याद क्यों है? क्योंकि वो बात आपकी धारणा में बैठी है। क्या यदि वो धारणा में नहीं हो ना तो निकल जाएगी, तो भूल जाएंगे आप। कोई भी बात, जो बात आपको याद है, जो बात आपको स्मृति में है, वो बात आपकी धारणा तक बैठी है इसलिए रिकॉल किया जा सकता है। जो धारणा में नहीं है उसे रिकॉल नहीं किया जा सकता है। अब धारणा का लेवल होता है, धारणा मतलब किसी चीज को जैसे अपन खोदते हैं ना, उकेर देते हैं उसको, गाढ़ेपन के लिए, प्रगाढ़ता के लिए, शार्पनेस उसकी और ज्यादा छाप दिया हमने, तो कितना गहराई से वो चीज छपी है दिमाग में। जो चीज जितनी गहराई से छपी होगी उस चीज के मिटने में उतना लंबा काल चलता है। क्या इसलिए मैं दो तरह से बातें कहता हूं धारणा के बारे में। धारणा अच्छी चीज भी है और धारणा खराब चीज भी है। आप अच्छी बातों को धारणा में रखो और आप खराब बातों को धारणा से निकालो। धारणा में किसी विषय से जाने का बेस क्या होता है? रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। उससे क्या होता है? वो चीज धारणा में चली जाती है। जब वो चीज धारणा में चली जाती है तो फिर काफी समय तक तो उसको याद नहीं करने के बावजूद भी एकदम देखा और वापस आ गई। क्या जब धारणा से निकल जाती है ना चीज तो फिर भूल जाते। धारणा से निकली और भूल गए। कब तक धारणा में? देखो आपसे पूछा, आप लोगों सबने अभी लंच किया था? लंच तो किया था ना अभी सबने? क्या किया आपको याद है कि नहीं? याद है सबको? याद है ना? याद है, क्योंकि वो जो हमने किया था वो हर चीज एवरी मोमेंट हमारे ज्ञान के ऊपर प्रिंट होता है। जो देखते हैं, जो जानते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, हर चीज हमारे ज्ञान पर प्रिंट होती है। लेकिन वो जो प्रिंट होती है उस प्रिंट की डेंसिटी कितनी है, वो कितनी गहराई से छपा है। जैसे अब ये अनइम्पोर्टेंट थिंग थी, आपने जो लंच किया, आपने क्या भोजन किया, आज पूछ रहे हैं अभी तो आप बता रहे हैं, लेकिन यदि आपसे पूछेंगे कि 3 दिन पहले आपने लंच में क्या लिया था,
याद नहीं है?
याद नहीं है? और समझिए आप अभी 2018 चल रहा है, मैं ये पूछूं 17 अक्टूबर 2016 को आपने लंच में क्या लिया था? याद नहीं है? याद हो सकता है कि नहीं? 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले का हो सकता है? क्या हो सकता है? जो बात धारणा में बैठी होगी वो याद आएगी। अरे भाई साहब, डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है आपके मुंह से कि लड्डू तो हमने उनकी शादी में खाए थे। बोलता है ना, अरे क्या लड्डू बने थे उस समय, तो वो तो वो हमें ऐसा याद है बिल्कुल। कभी कभी तो कहता है साहब आपके यहाँ के जो लड्डू थे वो तो आज तक मैं उसको याद करता हूँ और स्वाद आ जाता है। ये क्या हुआ, ये कैसे स्वाद आ जाता है आपको, ये कैसे याद है? कभी कभी महेंद्र भाई ये ऐसा कहता है, पंडित जी याद नहीं रहता। क्या कहता है? याद नहीं रहता। अभी अभी मैं यदि किसी सूत्र के बारे में पूछूंगा ना पीछेगा तो कहेंगे पंडित देखो इस उम्र में याद नहीं होता। बचपन में तो हो जाता था, छोटी उम्र में तो हो जाता था। गणेश भाई इस उम्र में याद करना, इस उम्र में याद करना थोड़ा सा कठिन काम है। इस उम्र में नहीं होता, इस उम्र में नहीं होता, होता है क्या है, क्या है, क्या क्या याद होता है इस उम्र में?
जिस पर रुचि है वो सब याद रहता है।
मनोज जी आपने जिनको उधार दिया है वो आपने अभी याद किया कि आपने बचपन में याद किया था? वो कब याद किया आपने और वो नाम कब से याद है आपको? जब से उधार दिया है, है? वो बैठ गया बराबर पैसा मिलने के बाद में भूल जाएगा, मेरी याद नहीं रखता है ये लेकर के याद नहीं रखता है। जीव की बड़ी विचित्र तरह की स्थिति है, लेके याद नहीं रखता है और दिए हुए को भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है ये व्यक्ति दिए हुए को। कैसे कैसे याद रहता है ये धारणा की बात है। हम कहते हैं, आप कहते हो आपको याद नहीं रहता, और लेकिन हमने आपसे सुना है, आप कह रहे थे पंडित जी मैं आपको क्या बताऊं, उसने जो मेरे साथ में किया था ना 30 साल पहले मैं भूल नहीं सकता, आज भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, हूं मैं हूं शब्द, आज भी उसने जैसा मेरे साथ में किया था मैं कैसे भूल सकता हूं उसको। कि सुन ये याद रखने की चीज नहीं है, क्यों नहीं भूलता है उस चीज को, क्यों याद रखता है? किसी ने तुम्हारे साथ में बुरा किया, किसी ने तुम्हारे को गाली दी, किसी ने तुम्हारे को अपशब्द कहा, तू उसे भूल जाता है। और यहाँ ये वितरागी संत ये तुम्हें कहते हैं तुम्हें भगवान क्यों, तुझे याद नहीं रहता, ये कह रहे हैं तो अप्रमत्त प्रमत्त नहीं है, ये याद नहीं रहता, ये तुझे शुद्ध कह रहे हैं, ये तुझे ज्ञायक कह रहे हैं, ये तुझे बना बनाया भगवान कह रहे हैं, और तू कहता है मुझे याद नहीं रहता। ये स्वाध्याय की बातें, ये सत्संग की बातें, ये तत्व चर्चाएं, ये हमारे को याद नहीं रहती है, क्या हो गया है? क्या अपने दिमाग में कचरे का ही स्टोरेज करना है? वो गंदगी है, वो कचरा है। किसी व्यक्ति ने हमारे को गाली दी, तो जो गाली दी उसको हमने स्टोर कर लिया ना कि उसने मुझे गाली दी थी, तुम कचरा इकट्ठा कर रहे हो अपने दिमाग में जो इकट्ठा करने लायक नहीं था, निकालो उसको धारणा से, मत चलने दो उसको धारणा में, ज्यादा लंबे समय तक किसी भी चीज को मत घुमाओ। यदि तुम्हें घुमाना है अपने उपयोग में ज्यादा लंबे समय तक तो नमोकार मंत्र घुमाओ, पंच परमेश्वरों के स्वरूप का स्मरण करो, वस्तु स्वरूप का स्मरण करो, उसका जाप करो, उसका घोलन करो, वो चिंतन में चलना चाहिए, वेद विज्ञान करो, जीव जुदा पुद्गल जुदा ये घुमाओ अपने उपयोग में, ये याद रहे आपको। ये क्यों नहीं याद रहता है? 7 तत्वों के नाम घुमाओ, 14 गुणस्थानों के नाम घुमाओ, सत्वार सूत्र के सूत्र ये अपने उपयोग में घुमाओ, सोते समय हर जब सोते समय रोजाना ये घुमाओ कि नींद नहीं आ रही है मेरे को तो क्या करना है, कि जो याद किया हुआ है उसको घुमाओ, उससे क्या होगा ये धारणा में बैठ जाए। और धारणा का चमत्कार बतलाता हूँ आपको, ये जो पीछे हमने एक 3 नंबर का सूत्र पढ़ा था, हाँ देखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि भूल गए, 3 नंबर का सूत्र पढ़ा था, क्या था? तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्गज और अधिगमज, 2 प्रकार से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। सुनो भाई निसर्गज तो छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो अधिगमज तो तत्काल उपदेश हो गया, निसर्गज कैसे हुआ? निसर्गज कैसे हुआ? स्वभाव से, स्वभाव से हुआ ना, तो स्वभाव से हुआ तो 5 में से 4 लब्धियों से हो गया होगा, 4 से हुआ होगा ना, कि नहीं देखना तो थी कि कब थी, पहले की थी, पिछले जन्मों की थी, तो पिछले जन्मों की देशना तो अभी काम आ रही है कि नहीं आ रही है, कि कैसे? धारणा से। आज जो आप बात सुन रहे हैं यहां बैठ करके, यदि ये बातें गहराई से, जिसकी कल चर्चा हमने की थी कल के प्रवचन में, कर विचार कर विचार कर विचार कर विचार तो काम, यदि आपने गहराई से विचार, कल थे ना आपसे कल नहीं थे आप, परसों थे शाम को, सतवार सूत्र में थे, कल आपने मिस कर दिया, सर वो उनका तो उनके उनके काम आएगा, आपका आपके काम आएगा। सुनना कल विचार करने की बात है, हम विचार नहीं करते, सुनता है फिर भी विचार नहीं करता है, विचार नहीं करता है। अब जिस चीज के बारे में ज्यादा विचार करता है, विचार 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 वही विचारों में चलता है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो जो विचार हो रहा है क्यों क्यों वो उसके ऊपर रिपीटेशन हो रहा है। जैसे समझो एक बार आपने कोई चीज लिखी, एक अक्षर लिखा आपने पेन से, अब क्या किया दोबारा उसके ऊपर जब उसको याद किया तो मतलब दोबारा उसके ऊपर पेन फेर दिया, ठीक है मुकुंद भाई। अब तीसरी बार याद किया इसका मतलब तीसरी बार फिर उसके ऊपर पेन घुमा दिया, फिर उसके ऊपर पेन घुमा दिया, फिर उसके ऊपर पेन चलाया, फिर उसके ऊपर पेन चलाया, तो कितना गाढ़ा हो गया है। अब इतना मजबूत हो गया कि इस जन्म में आपका काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ये यहाँ याद की हुई चीज अगले जन्म में स्मरण में आ जाती है। ये धारणा फर्स्ट लेवल जब स्मृति में नहीं बैठता है वो फर्स्ट लेवल कहलाता है अवग्रह है। चार बातें थी साहब यहाँ मति ज्ञान की प्रोसेस बतला रहे, मति ज्ञान का प्रोसेस बतला रहे। अवग्रह क्या होता है, अवग्रह मतलब किसी भी पदार्थ को जानकर देखकर बस निकल गया तुरंत, वो है अवग्रह। अवग्रह होकर के छूट गया, जैसे रोड पर बहुत सारी चीजें दिखी होगी आपको
बिना
रस की छूट गई। अभी घर से लेकर के यहाँ तक आते समय अनगिनती चीजें आपके चक्षु इंद्री का विषय बनी थी, अनगिनती चीजें चक्षु इंद्री का विषय बनी थी, उनमें से क्या क्या याद है आपको, कुछ नहीं,
कुछ
नहीं। चक्षु इंद्री का विषय बनकर के छूट गई अवग्रह। हाँ जैसे ही उस अवग्रह में थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ता है ज्ञान तो हो जाती ई हा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, बहुत जगह मिलते हैं शास्त्रों में एग्जाम्पल है, दूर से हमने छत पर खड़े हुए देखा, क्या देखा, कुछ है, कुछ है, कुछ वाइट वाइट का दिखा मेरे को, कोई है, कुछ कुछ सुना आपने कर्णन जी का विषय, मैंने घर में बैठे थे एकदम कुछ आवाज आई, अगर कुछ है फिर आपने काम में लग गए, ठीक है वो अवग्रह होकर के रह गया। लेकिन कुछ है के बाद में यदि आपका क्वेश्चन बना रहा कि क्या है, देखे तो क्या है, ये हो गया ई हाँ, सेकंड स्टेप हो गया कुछ है अवग्रह, क्या है ई हा, ठीक है। फिर क्या है का जो जवाब आया वो है अवाय, अवाय मतलब निर्णय, पता लग गया आपको क्या है, अवाय हो गया। अब जो पता लगा, पता लगने के बाद जो चीज ज्ञान में रह गई वो है धारणा। ज्ञान की प्रोसेस है ये, जानने की प्रक्रिया है ये, लेवल है ज्ञान, ज्ञान के अलग अलग है। किसी चीज को जाना अवग्रह, फिर उसे और विशेष जाना ईहा, और विशेष जाना अवाय, और विशेष गहराई लिए हुए ज्ञान का विषय बना, वो हो गया धारणा। तो हमारी धारणा में क्या चीज जाएगी जो अवग्रह ईहा और अवाय से होकर के गुजरेगी। अब हम ये कह रहे हैं आपके आपस में झगड़े हुए, समझो आप मुझे था ना कमट, कमट क्या, कमट के धारणा ज्ञान में वो इंसिडेंट बैठ गया था पुराना। तो क्या होता था कि जिस जिस भाव में वो पार्श्वनाथ को देखता था वो बात याद आ जाती थी वापस, वो धारणा वाली बात। तो अब ये धारणा वाली बात याद नहीं, अब जैसे देखो अभी अभी कुछ सुनाई दे रहा है आपको बाहर से, क्या सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ सुनाई दिया, सुनाई दिया, सुनाई देने के बाद में आपने ध्यान नहीं दिया, चल रही है अपनी क्लास, कोई बात नहीं, अवग्रह होकर के रह गया। लेकिन हल्की आवाज आ रही है, एक चीज की आवाज है, जैसे जिज्ञासा हुई तो क्या होगा ई हा, फिर आपने खड़े होकर के देख लिया, ओ बिजलियां पड़क रही है, पानी बरसात हो रही है, ये क्या हुआ? आवाज, निर्णय हो गया। अब जब आपने एक बार निर्णय कर लिया तो अब वो आपकी धारणा में बैठ गया, अब वो धारणा में बैठ गया तो यहाँ बैठे बैठे भी, अभी जब हमने पूछा सबकी निगाह मेरी तरफ है, दरवाजा किसी को नहीं दिख रहा है, पीछे बाहर हॉल के बाहर क्या हो रहा होगा किसी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो शब्द ध्वनि आवाज वॉइस सुन करके आपने तुरंत कह दिया और बाहर तो कैसे कह दिया, धारणा में था वो। ऐसी आवाज किस चीज की होती है? ये आपकी धारणा में बैठी हुई है, इसलिए पकड़ लेते हैं। किसी भी चीज को धारणा में बैठाने के लिए अच्छा उपाय है आप सोते समय उस चीज का विचार करें। क्या कह रहा हूं मैं? जिस चीज को आप धारणा में बैठाना चाहते हैं, अब खराब चीजों को धारणा में बिठाएंगे तो, क्योंकि निद्रा के समय सोते समय लास्ट जो आपका चिंतन जो चल रहा था, वो चिंतन सोते 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 वो आपके ऐसा पक्का हो गया, आप कुछ भी नहीं सकते हो। अब इसीलिए कहते नौवां नमोकार मंत्र बोल के सोना, भगवान का स्मरण करके सोना, क्यों क्यों कहते हैं ऐसी बातें? बचपन से सुनते रहे हम, वो धारणा में चली जाए, हमारे स्मृति पटल के ऊपर वो चीज छपी रहे, और वो चीज कितनी मजबूत कि वो सब कॉन्शियस माइंड में चलता है, वो अंदर जो विचार चला था वो। इसलिए कभी भी झगड़ के मत सोना, लड़ाई करके मत सोना, नहीं कहता आपने लड़ाई करके विवाद करके सोए तो लड़ाई अंदर जा रही है, वो आपकी धारणा में जा रही है, वो आपके विद्वेष का कारण बनेगी, वो आपके बैर का कारण बन सकती है, वो आपके जन्म जन्मांतरों में दुश्मनी का कारण बन सकती है। बी अलर्ट, दुश्मनी नहीं पालनी है, बैर नहीं पालना है, अभी की चीज को अभी खत्म करो। अरे जितना जल्दी इन विवाद को झगड़े को लड़ाई को मन मुटाव को खत्म कर दो उतना अच्छा है। अरे साहब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत चाहता हूं, लेकिन सामने वाला कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप तुम उठाओ मिटाने के लिए। ये मत समझो मैं हार गया, मैं झुक गया, मैं, अरे भाई साहब कषाय हारी है, ज्ञान जीता है। कौन जीता है और कौन हारा है, ये हार जीत इसमें नहीं है कि कौन झुका और कौन नहीं झुका है, हार जीत इसमें है कि किसकी कषाय मेंटेन है और किसकी कषाय मिट गई है। जिसकी कषाय मिट गई है वो जीत गया है, और जिसकी कषाय मेंटेन है वो हारा हुआ है। ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई होती है, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोगों के लड़ते समय पता है हार हमेशा ज्ञानी की होती है। क्या कह रहा हूं? हार ज्ञानी की होती है, या डेफिनेटली वो गिवअप कर देता है। अज्ञानी जीव की हार नहीं होती, क्योंकि अज्ञानी जीव का मन वचन वाणी बुद्धि सब शक्ति लड़ने के लिए लगी हुई है, और ज्ञानी जीव को डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है। ज्ञानी जीव के भी अभी ज्ञानी है तो भगवान तो बन नहीं गया, गृहस्थ ज्ञानी है मान लो, तो उसको डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है। मुकुंद भाई एक लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको सामने वाले से, और एक लड़ाई लड़नी पड़ती दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसको अपनी कषाय से। क्या अपनी कषाय? कषाय उसके अंदर में जो कषाय उत्पन्न होती है वो कषाय कहती है, कषाय ये कहती है कि लड़, और अंदर में जो ज्ञान होता है वो कहता है छोड़ना है यार, कौन लड़ेगा, छोड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे विवाद से नहीं पड़ना, मुझे गुस्सा नहीं करना। अब क्या मतलब है, उसने ऐसा कर दिया, फिर अपना ही मन कहता है छोड़ो यार कोई बात नहीं, अब जिसका जो जाने। अब अभी क्या कर रहे हैं, अब सामने वाले से लड़ाई हो रही है मान लो, तू मैं हो रही है तो क्या होगा? ठीक है, हॉट एक्सचेंज जो हुई है आपस में, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? अज्ञानी तो बोलता रहता है क्योंकि वो उसका तो काम ही झगड़ने का है, और ज्ञानी थोड़ा तो बोलता है फिर थोड़ी देर बाद में सोचता है यार छोड़ो मुझे नहीं लड़ना यार, फिर कुछ यहाँ ठीक है ये जो कहे वो मान लो आप, तो ऐसा तक कहने लगता है। तो सारे जगत को ये दिखता है कि ये ज्ञानी हार गया या ज्ञानी जीत गया, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज्ञानी के अंदर में जो अपने आप का जो युद्ध चल रहा था ज्ञान और कषाय का, कषाय लड़ाने का काम कर रही थी, ज्ञान लड़ाने लड़ाई मिटाने का काम कर रहा था, अब वो लड़ना नहीं चाहता है, तो ज्ञानी का ज्ञान जीत गया और कषाय हार गई। कौन जीता? ज्ञान जीत गया। मुझे नहीं लड़ना है, मुझे कषाय नहीं करनी है, मुझे विवाद नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। जितना जल्दी अज्ञानी ये कहते हैं नहीं, तो सुन भाई लेके क्या करेगा इसका? देखो हस्बैंड वाइफ की बात कर लो, भाई भाई की बात कर लो, पिता पुत्र की बात कर लो, जहां जहां झगड़े देखते हैं आपको, देवरानी जिठानी की बात कर लो, सास बहू की बात कर लो, जितने रिलेशन मैंने आपको कहे हैं, इन सब रिलेशन में कहीं ना कहीं बर्तन बचते हुए दिखते हैं। सब में बर्तन बचते, हमारे यहाँ से हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों के भी बर्तन बचते हैं, वही तो हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, पिता पुत्र में भी हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है ना, तो और किस किस में? देवरानी जिठानी में हो सकता है, सास बहू में हो सकता है, ये सारे रिलेशन इसी तरह के हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इन सारे रिलेशन में जब भी उसने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, जो कुछ भी हुआ, उसको लंबा मत करो, खेचो मत उसको। क्यों? वो जितना खींच रहे हो उतना वो धारणा में जा रहा है, और जिसकी धारणा में जा रहा है, सुनो, सामने वाले का बिगाड़ नहीं हो रहा है क्या महेंद्र भाई? मैं एक बात कहता हूं, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, सेंटेंस याद रखना, पहले भी कहा होगा कभी, दिमाग में बिल्कुल धारणा में बिठा लेना, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ना है, क्या करें बोलो? हमने उसके लिए भाव बिगाड़े, उसके लिए भाव बिगाड़े, उसके लिए क्या? तो उसके लिए बिगाड़े तो भाव तो तेरा बिगड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोचता है? क्यों बिगाड़ रहा है? तो उसके लिए भाव, भाव बिगाड़ना बंद करो, अच्छा सोचना शुरू करो, अपने इस धारणा ज्ञान पर, स्मृति पटल के ऊपर अच्छी अच्छी बातें, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अनंत गुण संपन्न हूँ, मेरा मरण नहीं होता कभी भी, मैं अपने आत्म तत्व का अनुभव करके मैं परमात्मा बन सकता, ऐसी बातें अपनी धारणा ज्ञान में बिठाओ। ये बात यहाँ इस मति ज्ञान के भेद प्रभेदों के माध्यम से हमने शुरू की है, थोड़ी देर बाद में सेकंड प्रवचन जब हम करेंगे, इन्हीं बातों को और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को जरा